नमस्कार भारत, 7 सितंबर दिन शुक्रवार। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। पूर्व रूसी जासूस पर हमले के मामले में रूस के खिलाफ ब्रिटेन, अमेरिका सहित कई देशों ने दिखाई एकजुटता।
The United States expresses its unequivocal condemnation of the use of chemical weapons in Salisbury or anywhere else.
तेलंगाना विधानसभा भंग होने के बाद आज से TRS का चुनाव प्रचार शुरू।
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्र समिति का चुनावी अभियान आज से ही शुरू करने जा रहे हैं। हुस्नाबाद एक जगह है, जिला है सिद्दीपेट, वहाँ पे आज एक बड़ी जनसभा होगी।
ले चलेंगे मराठवाड़ा के एक ऐसे स्कूल में जहाँ पढ़ते हैं खुदकुशी कर चुके किसानों के बच्चे।
कि किसानों के जो बच्चे हैं, जो खुदकुशी करने वाले किसान जो है, उनके बच्चों को हमने फैसला किया कि उन बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण शांतिवन में होना चाहिए।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से। ब्रिटेन में पूर्व रूसी जासूस सर्गे स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया स्क्रिपल पर जहरीले नर्व एजेंट नोविचोक से हुए हमले का मामला संयुक्त राष्ट्र में पहुंच गया है। ब्रिटेन का कहना है कि इस हमले को रूसी सेना के खुफिया अधिकारियों ने अंजाम दिया था। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जैसे देश भी अब खुलकर ब्रिटेन का समर्थन कर रहे हैं। इन सब ने मिलकर एक साझा बयान भी जारी किया है और रूस से उसके नोविचोक कार्यक्रम को सार्वजनिक करने की मांग की है। वहीं रूस ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ब्रिटेन उसके खिलाफ घृणित दुर्भावना से ग्रस्त है। ब्राजील के धूल दक्षिणपंथी नेता और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जाइर बोल्सोनारो पर एक चुनावी रैली में चाकू से हमला किया गया है। सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने उनके पास आकर उन्हें चाकू मार दिया, जिसके बाद गंभीर रूप से जख्मी बोल्सोनारो को उनके समर्थक कंधों पर उठाकर वहां से ले गए। ऑपरेशन के बाद उनकी हालत स्थिर है। पुलिस का कहना है कि उसने घटनास्थल से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसने बोल्सोनारो पर हमले की बात कबूल ली है। पुलिस के मुताबिक शख्स का कहना है कि उसने बोल्सोनारो की दक्षिणपंथी नीतियों से असहमति के कारण उन पर हमला किया। ब्राज़ील में अगले महीने राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और हालिया ओपिनियन पोल्स में कहा गया था कि बोल्सोनारो को चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट मिलने की संभावना है। ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ ने इस हमले की निंदा की है।
Agora, quem fez isso tem de pagar. Quem fez isso não pode ficar impune. Por que que não pode ficar impune? Porque tem de servir de exemplo.
जिसने भी ये किया है उसे इसकी सजा भुगतनी होगी। वो बिना दंडित हुए नहीं छोड़ा जा सकता। हम उसे बिना सजा भुगते क्यों जाने दें? बोल्सोनारो के साथ जो हुआ वो किसी और उम्मीदवार के साथ नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं होने दे सकते। एक लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चाकू मारने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। सीरिया में अमरीका के नए राजदूत जिम जैफरी ने कहा है कि ऐसे सबूत पाए गए हैं जिससे पता चलता है कि सीरियाई सरकार विद्रोहियों के कब्जे वाले अंतिम बड़े गढ़ इदलिब में रासायनिक हमले की तैयारी कर रही है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि इदलिब में हमले की योजना निंदनीय है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने उन लोगों और समूहों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं जिन पर सीरियाई सरकार को आर्थिक सहायता और तेल की आपूर्ति देने के आरोप हैं। सीरियाई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि इदलिब में होने वाले हवाई हमलों की संख्या बढ़ गई है। लगातार हो रहे हमलों की वजह से इदलिब से अपना घर छोड़कर भागने वाले लोगों ने कहा
قصف بشكل جنوني عشوائي لا يميز بين مدنيين وعسكريين بالجوامع بغير الجوامع।
वो जब मन चाहे पागलों की तरह गोलियां बरसा रहे हैं। उन्हें बेगुनाह लोगों और सशस्त्र विद्रोहियों में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। हालात बेहद अफरा तफरी वाले हो गए हैं। इदलिब से जान बचाकर भागने वाले एक शख्स के शब्द। मेक्सिको में अभियोक्ताओं ने कहा है कि उन्होंने वेराक्रूज में एक सामूहिक कब्र में कम से कम 167 लोगों के अवशेष पाए हैं। राज्य के अभियुक्ता होखे विंकलर ने कहा कि इन शवों को कम से कम 2 साल पहले दफनाया गया था। BBC समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। इस साल मार्च में ब्रिटेन के सॉल्सबरी में पूर्व रूसी जासूस और उनकी बेटी पर हुए नर्व एजेंट हमले का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहुंच चुका है, जहां पर ब्रिटेन अमेरिका सहित कई देशों ने रूस की कड़ी आलोचना की है। ब्रिटेन ये साफ कर चुका है कि नर्व एजेंट हमले को रूसी सरकार में बड़े स्तर पर मंजूरी मिली हुई थी। इस पर अमरीका ने ब्रिटेन का पूरी तरह से समर्थन किया है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए सिंधु वासिनी से।
ब्रिटेन में पूर्व रूसी जासूस सर्गे स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया स्क्रिपल पर जहरीले नर्व एजेंट नोविचोक से हुए हमले के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस बारे में हुई एक बैठक में दोनों पक्षों के बीच तीखी बयानबाजी हुई है। बैठक में ब्रिटेन के जांचकर्ताओं ने यूएनएससी को पूरी जानकारी दी। ब्रिटेन का आरोप है कि सर्गे और यूलिया पर रूसी सेना के खुफिया अधिकारियों ने हमला करवाया है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा ने भी रूस के खिलाफ ब्रिटेन के आरोपों का समर्थन किया है। साझा बयान में इन देशों ने रूस से उसके नोविचोक प्रोग्राम का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग भी की है। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की राजदूत कैरन पियर्स ने कहा कि रूस अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ जाकर चीजों को अंजाम दे रहा है।
People are supportive of what we're trying to do to explain just how much Russia.
हम जो करना चाहते हैं लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि रूस किस तरह उस अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के खिलाफ काम कर रहा है, वही तंत्र जो साल 1945 से हमारी सुरक्षा कर रहा है। लेकिन हम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रूस को ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की राजदूत कैरन पियर्स के शब्द। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने कहा कि नर्व एजेंट से हुआ हमला कोई अपरिपक्व हमला नहीं था, बल्कि इसे रूसी सरकार के बड़े स्तर पर लगभग मंजूरी मिली हुई थी। संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत निकी हेली ने कहा कि अमरीका रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की स्पष्ट आलोचना करता है, फिर चाहे वो ब्रिटेन के सैलिसबरी में हुआ हमला हो या दुनिया के किसी और कोने में।
The United States expresses its unequivocal condemnation of the use of chemical weapons in Salisbury.
हम इन भयंकर हथियारों के खिलाफ बने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और ब्रिटेन के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत निकी हेली के शब्द। दूसरी तरफ रूस ने इन सारे आरोपों को अस्वीकार्य बताते हुए खारिज कर दिया है। रूस ने ब्रिटेन पर बिना किसी सबूत के उस पर आरोप लगाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वो रूस के खिलाफ घृणित दुर्भावना से ग्रस्त है। इस साल 4 मार्च को दक्षिणी ब्रिटेन के सैलिसबरी सिटी सेंटर में 67 साल के पूर्व रूसी जासूस सर्गे स्क्रिपल और उनकी 33 साल की बेटी यूलिया स्क्रिपल एक बेंच पर बेहोशी की हालत में मिले थे। ब्रिटेन की सरकार का कहना था कि इस हमले में रूस में बने नर्व एजेंट नोविचोक का इस्तेमाल किया गया था। इस घटना के बाद ब्रिटेन और रूस के संबंधों में तल्खी आ गई थी और इसके बाद से ये तल्खी कम होती नजर नहीं आ रही है।
संयुक्त राष्ट्र में पहुंचा नर्व एजेंट हमले का मामला, रिपोर्ट सुना रही थी सिंधु वासिनी।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
बढ़ते हैं आगे। भारत और अमेरिका के बीच अहम कूटनीतिक वार्ता 2+2 कल दिल्ली में संपन्न हुई। इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में दोनों देशों के नेताओं ने कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और कुछ ऐसे समझौतों पर दस्तखत किए जो लंबे समय से लटके हुए थे। इसमें व्यापार, सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मामलों पर भी बात हुई। बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर ने रक्षा मामलों के जानकार सुशांत सरीन से बात की और जानना चाहा कि आखिर इस सम्मेलन से क्या निकलकर सामने आया है।
लेकिन सबसे बड़ी बात तो जो कॉमकासा वाला एग्रीमेंट है जिस पर समझौता हुआ है भारत और अमेरिका का, मेरे ख्याल वो एक बहुत उसका महत्व है, क्योंकि वो भारत और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है उसको अगले लेवल पर लेकर जाएगा। उसका डिफेंस के मामलों में भी बहुत अहमियत है और एक लिहाज से जो स्ट्रैटेजिक मामले हैं दोनों देशों के बीच में जो काफी देर से लटके हुए थे, क्योंकि ये जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स जिनको अमेरिका बोलता है इन पर भारत की कुछ रिजर्वेशंस शुरुआत में थी, लेकिन अब क्योंकि 3 में से 2 पर समझौता हो गया है और जो तीसरा वाला है अभी का उस पर भी शायद कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि ये दोनों जो लिनोवा था एक्सचेंज ऑफ फैसिलिटीज का और ये जो कॉमकासा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और सिक्योरिटी वाला जो समझौता था, ये ज्यादा अहमियत रखते थे। और मेरे ख्याल इसके बाद जो एक स्ट्रैटेजिक लेवल की रिलेशनशिप है डिफेंस के क्षेत्र में खासतौर पर, उसमें और ज्यादा नजदीकी आएंगी। तो मेरे ख्याल सबसे बड़ी उपलब्धि जो हुई है वो तो शायद ये समझौते की हुई है।
सुषमा स्वराज ने ये भी कहा कि अमरीका जो है NSG की सदस्यता दिलवाने के लिए कोशिश करेगा भारत के लिए, तो क्या इस दिशा में ये पहले की तरह जो बातें होती रही है उस तरह या कुछ ठोस बात निकल के सामने आई है इस दिशा में?
बिल्कुल, अमरीका की एक लिहाज से आश्वासन तो है भारत को और अमरीका ने अपने तहीं काफी कोशिशें भी की है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा अड़ंगा जो रहेगा वो चीन का रहेगा और उस पर अमेरिका कितना असरअंदाज हो जाएगा ये कहना भी मुश्किल है।
सुषमा स्वराज ने कहा कि हाल ही में लश्कर ए तैयबा से संबंधित जो चरमपंथी हैं उनकी नामजदगी का हम स्वागत करते हैं। पाकिस्तान का जिक्र हुआ, 26/11 हमले की 10वीं वर्षगांठ पे उन्होंने कहा कि गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर हम राजी हुए हैं, लेकिन इस तरह की बातें पहले भी होती रही हैं।
देखिए, अगर हम एक तरीके से देखें तो जितना शायद अमेरिका ने पाकिस्तान से जो दहशतगर्दी भारत की तरफ थोपी जाती है उस पर अपना असर और रसूख लेकर के आया है, शायद और किसी ने भी उतना नहीं किया। अब अमेरिका कितनी दूर तक जा पाएगा, क्योंकि उनकी अपने भी इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, उनकी अपनी भी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, इस पर एक सवालिया निशान जरूर रहेगा। लेकिन ये तो हमारे को मानना पड़ेगा कि चाहे दहशतगर्दों की खबरें जो हैं वो भारत को मिलती हैं या इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस का जो आदान प्रदान होता है भारत और अमेरिका के बीच में उसमें बहुत फर्क पड़ा, चाहे अब जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द ऑपरेट करते हैं उनकी नामजदगी करना, उनको लिस्ट पर लेकर के आना, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करना। जब हम बात कर रहे हैं तो लंदन में एक दाऊद इब्राहिम का सहयोगी जो उसकी मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ऑपरेशंस की सारी काम करता था, एक लिहाज से उसका अरेस्ट वारंट्स जारी हो रखे हैं और वहां पर केस किया जा रहा है। तो अमेरिका जितना शायद इस पर काम कर पाया है उतना भारत अपने आप तो नहीं कर पाता, लेकिन क्या अमेरिका जो टेररिस्ट ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करेगा या भारत की उसमें मदद करेगा, ये शायद अभी प्रीमेच्योर होगा ये कहना।
भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता से क्या हुआ हासिल बता रहे थे सुशांत सरीन। तेलंगाना में कैबिनेट के प्रस्ताव पारित करने के बाद कल विधानसभा भंग कर दी गई। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के प्रस्ताव को राज्यपाल ESL नरसिम्हन ने मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही प्रदेश में तय वक्त से करीब 9 महीने पहले विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। वहीं राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार की तैयारियों में भी लग चुकी हैं। और तो और, तेलंगाना राष्ट्र समिति आज से ही चुनाव प्रचार में जुटने जा रही है। इतनी तेजी की क्या वजह है और विभिन्न राजनीतिक दलों की क्या रणनीति रहने वाली है, यही जानने के लिए मैंने हैदराबाद में स्थानीय पत्रकार उमर फारूक से संपर्क किया।
तेलंगाना विधानसभा के भंग होने की जो प्रक्रिया थी वो एक तरह से पूरी हो गई है। औपचारिक रूप से यहाँ के जो प्रशासन है राज्य का, उसने दिल्ली के केंद्रीय चुनाव कमीशन को इस बात की सूचना दे दी है कि विधानसभा को भंग करने का जो अध्यादेश था वो जारी हो चुका है। एक तरह से अब यहाँ से चुनाव कमीशन की भूमिका शुरू हो जाती है। रहा राजनीतिक दलों का जो तैयारी का मामला है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्र समिति का चुनावी अभियान आज से ही शुरू करने जा रहे हैं। हुस्नाबाद एक जगह है, उनके जो जिला है सिद्दीपेट, वहां पे आज एक बड़ी जनसभा होगी और वहां से वो अपना चुनावी अभियान शुरू करेंगे। एक तरह से इसे जाहिर होता है कि वो पहले ही से तैयारी कर रहे थे कि उनको यकीन था कि विधानसभा भंग होगी और जल्द से जल्द चुनाव होंगे, तो उनकी जो योजना है वो पूरी तरह तैयार है और उनका कहना है कि अगले 50 दिनों में वो 100 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। एक तरह से इनकी जो रणनीति है वो ये है कि अब विपक्षी दलों को ज्यादा समय न दिया जाए तैयारी का, लेकिन कुछ पहले से तैयारी कर रहे हैं कि चुनावों के लिए पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन दूसरे तरफ विपक्षी दल कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। इनकी रणनीति का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा ये है कि वो तेलुगु देशम पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करेंगे और जो यहाँ के राज्य के कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष हैं उत्तम कुमार रेड्डी, उन्होंने एक तरह से चुनावी घोषणा पत्र का एक हिस्सा भी जारी कर दिया अपनी पार्टी का और काफी वादे किए गए लोगों से, जिस तरह के वादे खुद TRS कर चुकी है इससे पहले, उसी तरह के वादे किए गए हैं, लोगों को ज्यादा पेंशन देने की बात हो रही है, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो रही है।
कांग्रेस की आपने बात की, टीडीपी की आपने बात की, बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है?
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 15 तारीख को तेलंगाना में होंगे। वो महबूब नगर जिले में जहां पे बीजेपी का कुछ प्रभाव है तो वहां पे वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य तो यही रहेगा कि पार्टी की जो संगठनात्मक ढांचा है उसको मजबूत किया जाए और उसको सक्रिय किया जाए। अभी से यह लगा है कि मुकाबला असल तो तेलंगाना राष्ट्र समिति और कांग्रेस के बीच ही होगा, और अगर तेलुगु देशम के साथ उसका गठबंधन हो जाता है तो मुकाबला तगड़ा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर ये दोनों पार्टियों के बीच में मुख्य मुकाबला हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी वो उनके पीछे रहेगी। वैसे भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं है उसका ढांचा इस वक्त, हालांकि अमित शाह कई दिनों से कोशिश कर रहे थे, बार बार आए भी यहाँ पे, कई बार उन्होंने कहा कि उनका मिशन 2019 का यही रहेगा कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को सत्तारूढ़ पार्टी का दर्जा दिया जाए, लेकिन आज ये नहीं लग रहा है कि कोई गंभीर मुकाबले में रहेगी भारतीय जनता पार्टी।
तेलंगाना में चुनाव प्रचार की तैयारी, अधिक जानकारी दे रहे थे उमर फारूक। भारत प्रशासित कश्मीर में 4 साल पहले आज ही के दिन यानी 7 सितंबर 2014 को बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी थी। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए थे और 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 4 साल गुजरने के बाद कश्मीर में अब भी कई परिवार राहत कैंपों में रह रहे हैं। बाढ़ पीड़ित इन कैंपों में किन हालात में रह रहे हैं और सरकार इनके लिए कुछ कर रही है या नहीं, सुनिए श्रीनगर से माजिद जहांगीर की इस रिपोर्ट में।
जो 2014 में बाढ़ आया है तब से सरकार हमारे साथ धोखाबाजी कर रहे है, तब से बोल रहे हैं कि काल परसों, लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं।
ये थे तारिक अहमद मलिक, जिनकी जिंदगी वर्ष 2014 में बाढ़ आने के बाद अभी तक ना संभली है और ना ही बदली है। तारिक अपने परिवार के साथ जिला कुलगाम के कैलम इलाके में एक सरकारी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। रिलीफ कैंप में 16 परिवार ऐसे ही रह रहे हैं जैसे तारिक, सबकी मुश्किलें एक जैसी हैं। बाढ़ आने के बाद ये सब जिंदगी की जंग तो लड़ रहे हैं जिसको अभी तक ये जीत नहीं पा रहे हैं। ये सभी 16 परिवार रिलीफ कैंप के करीब गुंड गाँव के हैं। इनका गाँव बाढ़ का पानी अपने साथ बहा कर ले गया था और अगर वहां कुछ बचा है तो सिर्फ पत्थरों के ढेर। तारिक कहते हैं कि जिन टीन के शड़ों में हमें रखा गया है वहां एक कमरा है जिसमें उन्हें घर के सभी लोगों को रहना पड़ता है।
बहुत मुश्किल है, इधर हम रह नहीं पाते, दिन भर कम से कम 7-8 बजे के करीब हम अंदर आते शाम को, इतनी गर्मी है इधर हमारे शड़ों में, बहुत मुश्किल होते है, बच्चों की पढ़ाई यहाँ खराब होती है।
तारिक कहते हैं कि इतना ही नहीं बल्कि रिलीफ कैंपों में रहने की वजह से उनकी कई लड़कियों के रिश्ते भी टूट चुके हैं,
क्योंकि हमारे बच्चियां जो है वो बालिग हो गए, शादी के लायक हो गए, 3 लड़कियों की शादी टूट चुकी है इसी वजह से, क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं रहा है।
सरकार ने अभी तक इन परिवारों में 4.25 लाख रुपया का मुआवजा दिया है। 60 साल के अब्दुल रहमान कहते हैं कि जो मुआवजा दिया गया है वो एक घर में रहने वाले 3-3 परिवारों में तकसीम किया गया है।
मुआवजा दिया उस वक्त हमने सरकार ने, जो एक मकान था, एक मकान को एक दरवाजा था, उसको दिया था 4 लाख। जिस मकान में 3 फैमिली है, 4 फैमिली है, उसको भी मिला। अगर 2 दरवाजा है उसको मिला था 8 लाख, अगर एक ही दरवाजा था उसको मिला 4 लाख।
तारिक की पत्नी हसीना जान कहती हैं कि टीन के शड़ों में गुजरने वाली जिंदगी जहन्नम से कम नहीं है।
सर बहुत ज्यादा औरत के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है औरत के लिए ज्यादा प्रॉब्लम, जैसे खाना बनाने के लिए, मतलब हम खाना बनाते हैं यहाँ तो खाना बनाने के लिए बहुत कम जगह है, छोटा सा किचन है हमारा, तो अगर हम खाना बनाते तो 1 बजे तक वो खाना जो है खराब हो जाए, इतनी गर्मी होती है।
हसीना कहती है कि उनके यहाँ कोई ना मेहमान आता है और ना कोई रिश्तेदार।
मेहमान भी यहाँ आने से डरते हैं। सर कहाँ रुकते, इतनी ज्यादा गर्मी है, मेहमान भी नहीं आते, अब रिश्तेदार तभी आएंगे ना जब बैठने के लिए कोई जगह होगी।
हसीना की बेटी मुस्कान कहती है कि जब से रिलीफ कैंप में वो रह रहे हैं तब से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो गई है।
मैं तो फर्स्ट पोजीशन लाती थी घर में और यहाँ पर मैं थर्ड पोजीशन लाती हूँ या सेकंड, फर्स्ट पोजीशन नहीं ला पा रही हूँ।
हलीमा बता रही थी कि मेरे 2 जवान बेटे हैं जिनकी मैं शादी करना चाहती हूँ। वो ये सवाल पूछ रही थी कि बेटों की शादी करूँगी तो बहुओं को कहाँ रखूँगी। जिला कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर शमीम अहमद कहते हैं कि हम इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले 15 दिनों तक इन बाढ़ पीड़ितों के लिए जमीन मुहैया करवाई जाएगी।
लेकिन वो रह रहे हैं हमारे उन शेल्टर में, 16 शेल्टर में मैंने खुद विजिट किया, तो उनकी डिमांड है कि हमें वहीं पे बसाया जाए, अदरवाइज दे कैन टेक देम सम अदर प्लेस आल्सो। वहां पे हमें प्रोटेक्शन बंडल्स पहले अलग बनाने हैं, उनसे भी काम हो रहा है। वी आर वर्किंग ऑन दैट। आई थिंक ये 10-15 दिन में उनका मसला हल हो जाएगा।
अपने घरों में फिर से लौटने को बेताब तारिक और उनके जैसे अन्य 15 परिवार उस सुबह के इंतजार में हैं जब ये लोग अपने घरों की खिड़कियों से सुबह की रोशनी की पहली किरण देख सकें और अपने चेहरों पर उदासी और बेबसी की गरित को दूर कर सकेंगे। माजिद जहांगीर, BBC कैलम, कुलगाम, कश्मीर।
अब जान लेते हैं कि आज के अखबारों में क्या कुछ खास है। अखबारों के साथ स्टूडियो में हैं सिंधु वासिनी।
शायद आज की सबसे बड़ी खबर दी है भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने। अदालत ने आखिरकार आपसी सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया है। अलग अलग अखबारों ने दिलचस्प हेडलाइंस के साथ इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। जैसे इंडियन एक्सप्रेस की हेडिंग है लव एट फर्स्ट राइट, हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है रैनबो नेशन, और जनसत्ता ने हेडिंग लगाई है प्यार पर अब नहीं कोई पहरा। फैसला आने के बाद जश्न मनाते लोगों की तस्वीरें भी अखबारों के फ्रंट पेज पर हैं। कुछ लोग अपने पार्टनर को गले लगा रहे हैं और चूम रहे हैं, तो कुछ लोग जो LGBT समुदाय का सतरंगी झंडा उसे
वो हर अखबार के हर पन्ने पर वो झंडा दिख रहा है, हर जगह, वो सोशल मीडिया में भी वो झंडा हर जगह दिख रहा है,
तो सतरंगी माहौल जैसा बना हुआ है।
लेकिन इसमें 6 ही रंग होते हैं सिंधु वासिनी।
ओके
जी,
ये ठीक है, एक नई बात बताई आपने। और फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि जो भी जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, और लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इस फैसले के बाद समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता मिल जाएगी, इसके लिए सरकार को अलग से कानून बनाना पड़ेगा। और एक और पॉइंट है कि बच्चों और जानवरों से बनाए गए जो संबंध हैं उन मामलों में धारा 370 पहले की तरह ही लागू रहेगी।
यानी कि 370 पूरी तरह खारिज नहीं हुई है।
नहीं। और टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ SB वैद का अचानक ही ट्रांसफर कर दिया गया
जी।
और ट्रांसफर के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पद की जिम्मेदारी दे दी गई है, और इसकी कोई खास वजह अभी तक पता नहीं चली है।
SP वैद बहुत खासे चर्चित रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जिस तरीके से चरमपंथियों को लेकर ऑपरेशन वगैरह चलते रहते हैं
जी। और उनकी जगह पर जब तक कोई स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक कारागार महानिदेशक दिलबाग सिंह उनका काम संभालेंगे। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है कि अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए BJP ने अपने सांसदों और विधायकों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनमें कहा गया है कि वो पत्रकारों से अच्छी तरह पेश आएं।
जी सिंधु वासिनी, अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सिंधु वासिनी।
BBC इंडिया बोल।
एक तरफ दलितों की नाराजगी तो दूसरी तरफ अगड़ों की ललकार, तेल के बढ़ते दाम और रुपए की घटती साख। 2019 के आम चुनावों के पहले चुनौतियों के चक्रव्यूह से BJP को निकाल पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इस बार BBC इंडिया बोल में इसी सवाल की पड़ताल। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 8 सितंबर शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या फिर 1800-102-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
9 सितंबर को इंडिया बोल में जरूर भाग लें। कृषि संकट से जुड़ी जमीनी पड़तालों की विशेष सीरीज में BBC किसानों की खुदकुशी और खेती से जुड़े मुद्दों के अनछुए पहलुओं को श्रोताओं के सामने रखने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में आज आइए आपको लिए चलते हैं मराठवाड़ा के बीड जिले के एक खास स्कूल में, जहां आत्महत्या कर चुके किसानों के बच्चों को शिक्षा और प्यार मिल रहा है। सुनिए मराठवाड़ा से BBC संवाददाता प्रियंका दुबे की ये तीसरी रिपोर्ट।
ये कहानी है मराठवाड़ा के उन सभी बच्चों की जिनकी एक पूरी पीढ़ी माता पिता या अपने किसी अन्य परिजन को खेती के लिए लिया गया कर्ज न चुका पाने की वजह से आत्महत्या करते हुए देख चुकी है। लेकिन अब बीड जिले के अरवी गांव में चल रहा शांतिवन नाम का एक स्कूल उन्हें शिक्षा, पोषण और प्यार देकर पूरे जोश से जिंदगी का सामना करने के लिए तैयार कर रहा है। बाबा आमटे से प्रभावित शांतिवन के 40 वर्षीय संस्थापक दीपक नागरगोजे इलाके में बढ़ती किसान आत्महत्याओं से दुखी रहते थे और बाबा आमटे की ही तरह मराठवाड़ा की तस्वीर बदलने के लिए कुछ करना चाहते थे।
एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आ गया मराठवाड़ा का, बीड का, वो था किसानों की आत्महत्याएं। तो ध्यान में एक चीज आ गई, एक बात आ गई कि जब माता गुजारती है, पिता गुजारती है, तो उनके बच्चे जो होते हैं वो उनको बड़ी मुश्किल से जीना पड़ता है, उनकी पढ़ाई नहीं होती, उनका ठीक ठाक से पालन पोषण नहीं होता, तो वो बच्चों के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। शांतिवन की स्थापना 2000 में हुई। जब हमने शांतिवन की स्थापना की तब हमारे पास कोई भी नहीं था, घर में परिवार वाले बहुत उनका विरोध कर रहे थे, तो भी हमने वहाँ टीन के शेड बनाए, टीन शेड बना के 50 बच्चों को वहाँ रखा। और फिर ये किसानों के जो बच्चे हैं, जो खुदकुशी करने वाले किसान जो है, उनके बच्चों को हमने एक फैसला किया कि उन बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण शांतिवन में होना चाहिए। तो अब 200 बच्चे खुदकुशी करने वाले किसानों के शांतिवन में पढ़ते हैं।
अब मिलिए 20 साल की पूजा आउटे से। शांतिवन में ही पली बड़ी पूजा विदर्भ और मराठवाड़ा के बच्चों के लिए एक मिसाल बन सकती है। अपने पिता को खोने के बाद भी उनमें जिंदगी जीने का जज्बा कायम है। पूजा अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने परिवार को गरीबी के दलदल से निकालना चाहती है।
माझे वडील म्हणजे शेतीच करायचे आणि दीड एकर शेती आहे आणि माझे एक चुलते आहेत मोठे, तर त्या चुलत्याची आणि माझ्या वडिलाची शेती एकत्रच होती।
मेरे पिताजी खेती करते थे, हमारे पास कुल 1.5 एकड़ की खेती थी। मेरे ताऊ भी मेरे पिताजी के साथ साझेदारी में काम करते थे। जो भी अनाज हमारे खेत में उगता वो खुद उसे बेच देते। बेचने के बाद जो भी पैसा आता उसमें से हमें कुछ भी नहीं देते थे। कर्जा तो था ही, लोग मेरे पिताजी से पैसे मांगने आते तो वो कह देते कि दे दूंगा, पर अकेले बैठकर चिंता करते रहते। हम खेत में ही रहते थे, हमारे घर के पास एक कुआं था। उन्होंने अपने हाथ पैर बांधे और कुएं में कूद गए, क्योंकि उन्हें तैरना आता था। अगर वो हाथ पैर न बांधते तो वो तैरकर ऊपर आ सकते थे। अब मैं बड़ी होकर जॉब करना चाहती हूँ, फिर मैं अपनी माँ को गांव से शहर ले जाऊंगी और उन्हें कभी खेती नहीं करने दूंगी।
जॉब करून माझ्या मम्मीला पण मी शेतात काम नाही करून देणार, माझ्याकडेच मी मम्मीला पण ठेवणार।
बीते 2 दशकों के दौरान महाराष्ट्र 60,000 से ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं देख चुका है। ऐसे में मराठवाड़ा की बालाघाट पर्वत श्रृंखला में बसे इस स्कूल को पीढ़ी दर पीढ़ी जारी किसान आत्महत्याओं के दुष्चक्र को तोड़ने की दिशा में एक छोटे लेकिन सार्थक प्रयास के तौर पर देखा जा सकता है। यूं तो शांतिवन में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे गरीब किसान परिवारों से आते हैं, लेकिन अपने परिवारों को कर्ज और आत्महत्याओं के दुष्चक्र से निकाल कर जिंदगी में कुछ कर दिखाने का हौसला यहाँ सबके दिलों में बुलंद है।
किसानों से जुड़ी ये विशेष रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखें। अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं इंदु पांडे। इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में भारत के खिलाफ 3-1 की अजेय बढ़त बना ली है, जिसकी वजह से आज ओवल में शुरू हो रहा 5वां और अंतिम टेस्ट मैच सिर्फ एक औपचारिकता बन जाएगा। तो आज के इस मैच को लेकर के क्रिकेट एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली कहते हैं,
सीरीज तो हार चुके हैं, उनके पास एक ऑप्शन ये है कि स्पिनर एक खिलाए, रविंद्र जडेजा जो अभी तक बाहर बैठे रहे हैं, और बहुत लोग चाहते हैं कि पृथ्वी शाह को मौका दिया जाए खेलने का। तो शास्त्री ने ऑलरेडी बोला है कि हम जीतने की कोशिश करेंगे।
और हाल ही में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले भारत के शूटर सौरभ चौधरी ने एक और कारनामा किया है। उन्होंने विश्व रिकॉर्ड के साथ ISSF विश्व चैंपियनशिप में जूनियर 10 मीटर एयर पिस्टल का गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। अर्जुन सिंह चीमा ने इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि भारतीय टीम सौरभ के शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन की बदौलत सिल्वर मेडल जीतने में सफल रही। और अब बात करते हैं टेनिस की। 2 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच ने जॉन मिलमैन की परी कथा जैसे अभियान का अंत करते हुए सीधे सेटों में जीत के साथ अमेरिकी ओपन के पुरुष एकल सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां उनका सामना जापान के खिलाड़ी केई निशिकोरी से होगा। तो दूसरी तरफ 21वें वरीय जापान के निशिकोरी ने 5 सेट चले कड़े मुकाबले में मारिन सिलिच को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। महिला वर्ग में जापान की नाओमी ओसाका भी सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रही, और ये पहला मौका है जब किसी एक ग्रैंड स्लैम के पुरुष और महिला एकल दोनों वर्गों के सेमीफाइनल में जापान के खिलाड़ी एक साथ पहुंचे हों। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और अब से कुछ ही देर पहले US ओपन के सेमीफाइनल में सेरेना विलियम्स ने लातविया की अनास्तासिया सेवास्तोवा को हरा के फाइनल में जगह बना ली है। और अब चलते चलते मुख्य समाचार सिंधुवासिनी से।
BBC समाचार। ब्रिटेन में पूर्व रूसी जासूस सर्गे स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया स्क्रिपल पर जहरीले नर्व एजेंट नोविचोक से हुए हमले का मामला संयुक्त राष्ट्र में पहुंच गया है। ब्राजील के धुर दक्षिणपंथी नेता और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जाइर बोल्सोनारो पर एक चुनावी रैली में चाकू से हमला कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद उनकी हालत स्थिर है। सीरिया में अमेरिका के नए राजदूत जिम जेफरी ने कहा है कि ऐसे सबूत पाए गए हैं जिससे पता चलता है कि सीरियाई सरकार विद्रोहियों के कब्जे वाले अंतिम बड़े गढ़
इदलिब में रासायनिक हमले की तैयारी कर रही है। मेक्सिको में अभियोक्ताओं ने बताया है कि उन्होंने वेरा क्रूज में एक सामूहिक कब्र में कम से 166 लोगों के अवशेष पाए हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम 7:30 बजे होगी। तब तक देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए है हमारी वेबसाइट bbchindi.com। मोहम्मद शाहिद को दे अनुमति। नमस्कार।